बीबीसी और आकाशवाणी प्रस्तुत करते हैं चलो रियो।
आज के अंक में कहानी उस भारतीय की जिसने ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। बताएंगे 1928 ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान क्यों नहीं खेल पाए फाइनल मैच। देखेंगे क्यों कहती थी दुनिया ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर।
अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बाल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बाल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे, वो बिल्कुल ड्रिबलिंग करते थे।
और आपको मिलवाएंगे रियो ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत की अकेली उम्मीद शिव थापा से।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एशियन ओलंपिक्स क्वालिफायर्स, और काफी टफ पड़ाव था मेरे लिए। सेमीफाइनल की फाइट में मैंने कजाकिस्तान को हरा के ओलंपिक्स के लिए अपना स्थान बनाया और मैं बहुत खुश हूँ और रियो के लिए भी मेरा नेक्स्ट टारगेट।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। हमें मुराद है एक ऐसे क्षण की जहां हम उससे ऊंचा करें जितना हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। एक ऐसे गांव की कल्पना करना मुश्किल है जहां के सभी बाशिंदों की सिर्फ एक ही धुन हो। उन बुलंदियों के पार जाना जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मानवीय ताकत के परे हैं। जैसा कि बॉब बीमन ने मैक्सिको सिटी में 8.90 मीटर की छलांग लगाकर किया था।
Anything. It was just my breathing. And as I
मैंने जब लंबी कूद के लिए दौड़ना शुरू किया तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था सिवाय मेरी सांसों के। और जैसे ही मैंने उस सफेद बोर्ड के ऊपर से छलांग लगाई और हवा में गया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं नीचे ही नहीं आना चाह रहा था। अंततः जब मैं नीचे गिरा तो उस छलांग को ओलंपिक का यंत्र नाप ही नहीं पाया। उस लंबाई को अंततः हाथ से नापा गया और इसे शताब्दी की छलांग की संज्ञा दी गई।
चाहे वो एवरेस्ट पर जीत हो या 100 मीटर फर्राटे को 9.84 सेकंड में पूरा करना हो या 2.30 मीटर से ऊपर ऊंचा कूदना हो, लक्ष्य से पार जाने की मानव की चाह हमेशा बरकरार रही है। ओलंपिक खेलों में भारत की कहानी शुरू हुई थी सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में, जब कोलकाता के बाशिंदे एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड ने 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। वो न सिर्फ ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले एशियाई थे बल्कि बाद में हॉलीवुड में काम करने वाले पहले ओलंपियन भी बने। 1897 में भारतीय मिट्टी पर किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में पहली हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम लिखा गया। पेरिस में पदक जीतने के बाद वो अपनी जन्मभूमि कोलकाता लौटे, लेकिन फरवरी 1905 में वो जूट का व्यापार करने इंग्लैंड चले गए। लेकिन एक ओलंपिक इतिहासकार इयान बुकनन ने बाद में लिखा कि 1900 के ओलंपिक रिकॉर्ड्स में प्रिचर्ड को 200 मीटर दौड़ में इंग्लैंड और 200 मीटर बाधा दौड़ में ब्रिटिश इंडिया का रहने वाला बताया गया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की पेरिस ओलंपिक की रिपोर्ट में उन्हें ब्रिटिश टीम का सदस्य बताया गया। लेकिन एक दूसरे खेल इतिहासकार गुल्लू इज़ेकील ने टेलीग्राफ में एक लेख में लिखा,
पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों में से कुछ ने ही अपनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को पंजीकृत कराया था। उनमें भारत और ग्रेट ब्रिटेन शामिल नहीं थे। 1908 में जाकर पहली बार एथलीटों को उनके देश से जोड़कर देखा जाने लगा। इससे पहले वो ओलंपिक खेलों में निजी तौर पर भाग लेते थे। प्रिचर्ड की नागरिकता पर उठे विवाद के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन यहीं गुजारा था और भारतीय मिट्टी पर ही सबसे पहले नाम कमाया था।
भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में। जयपाल सिंह को इस टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने रांची से प्रथम श्रेणी में बीए पास किया था और वो समय की प्रतिष्ठित समझे जाने वाली आईसीएस की परीक्षा भी पास कर चुके थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियोल कॉलेज में आईसीएस की ट्रेनिंग ले रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा जनजाति से आते थे। बाद में उन्होंने हॉकी के बाहर भी भारतीय राजनीति में खासा नाम कमाया। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जयपाल सिंह का जिक्र करते हुए लिखा है,
बाद में जयपाल सिंह मारंग गोमके बन गए, छोटा नागपुर की जनजातियों के बड़े नेता, और बाद में भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई उसमें उन्होंने न सिर्फ छोटा नागपुर बल्कि पूरे भारत की जनजातियों का प्रतिनिधित्व किया। ये उन्हीं का प्रयास था जिसकी वजह से आजादी के बाद जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला।
जब एम्स्टर्डम के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो उसमें जयपाल के साथ साथ एसएम यूसुफ और टाइगर पटौदी के पिता इफ्तिकार अली खां पटौदी को भी शामिल किया गया। ये तीनों उस समय इंग्लैंड में ही रह रहे थे। बाकी के 13 खिलाड़ी पानी के जहाज कैसरे हिंद से एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुए। इनमें से 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे। जब भारत की टीम इंग्लैंड के टिलबरी बंदरगाह पहुंची तो उसका स्वागत करने के लिए वहां जयपाल सिंह मौजूद थे। इंग्लैंड में कई साल से रह रहे जयपाल सिंह को भारतीय टीम ने कतई प्रभावित नहीं किया। उन्हें वो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए देहाती खिलाड़ी लगे। जयपाल सिंह पूरी टीम को 2 बार रीजेंट स्ट्रीट के मशहूर भारतीय रेस्तरां वीरा स्वामी ले गए। आज की तरह उस समय भी वीरा स्वामी खासा महंगा रेस्तरां हुआ करता था। शुरू के अभ्यास मैचों में शौकत अली और ध्यानचंद ने जयपाल सिंह का ध्यान खींचा। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा,
ध्यानचंद मुझे शरीफ आदमी लगे। उनके पास सिर्फ एक पतलून थी। मैं उन्हें रीजेंट स्ट्रीट पर ऑस्टिन रीड की दुकान पर ले गया। हम नीचे की मंजिल में गए, उन्हें एक से एक पतलूने दिखाई गईं। जैसे ही ध्यानचंद ने कहा, क्या मैं उन्हें ऊपर ले जाकर सूरज की रोशनी में देख सकता हूँ, मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया। जब मैंने शौकत को ये बात बताई तो उसने हंसते हुए कहा कि तुम एक लांस नायक से और क्या उम्मीद कर सकते हो।
जयपाल सिंह को उस समय भारतीय टीम में चुने जाने पर खासा विवाद हुआ था। हालांकि ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा,
जयपाल सिंह की अंग्रेज खिलाड़ियों और वहां की ग्राउंड कंडीशंस की बारीक जानकारी से भारतीय टीम को बहुत फायदा हुआ और ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी करने में हमें बहुत मदद मिली।
लेकिन कई सालों बाद टीम के एक और सदस्य फिरोज खान ने अपनी 100वीं सालगिरह पर 2004 में पाकिस्तान में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जयपाल सिंह का भारतीय टीम में चुना जाना शुरू से ही सवालों के घेरे में था।
जयपाल सिंह ट्रायल के दौरान मौजूद लेफ्ट फुल बैक से बेहतर तो कतई नहीं थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच ये थी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हॉकी कैप्टन भारत में मौजूद किसी खिलाड़ी से बेहतर होगा। पूरी प्रतियोगिता के दौरान जयपाल सिंह भारतीय खिलाड़ियों से दूर ही रहते थे और खाने के दौरान ही उनके पास आते थे।
फिरोज खान ने इस बात का भी जिक्र किया कि जयपाल के टीम मैनेजर रॉसेट से संबंध अच्छे नहीं थे और वो मैचों के बीच वापस इंग्लैंड चले जाते थे। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया।
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड ध्यानचंद ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 3 गोल मारे। दूसरे हाफ में ध्यानचंद ने एक और गोल किया, बाकी 2 गोल शौकत अली और गेटली ने किए।
अगले मैच में बेल्जियम के खिलाफ भी भारत को 9-0 से जीत मिली। डेनमार्क को 5-0 से हराने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया। फाइनल में भारत ने कमजोर टीम खिलाते हुए भी हॉलैंड को 3-0 से शिकस्त दी। स्टेट्समैन ने अपने 29 मई 1928 के अंक में लिखा,
भारत की चमत्कारी हॉकी को स्टेडियम में मौजूद सभी 40,000 दर्शकों ने सराहा। भारत के 2 बड़े खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेले। डेनमार्क के खिलाफ मैच में फिरोज खान की कॉलर बोन टूट गई। शौकत अली को मैच वाले दिन बुखार आ गया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने प्रभावशाली जीत दर्ज की।
दिलचस्प बात यह है कि अखबार में फाइनल में जयपाल सिंह के न खेलने का कोई जिक्र नहीं किया गया। फाइनल में टीम की कप्तानी एरिक पिनिगर ने की। बाद में एक हॉकी इतिहासकार केएल कपूर ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ हॉकी में लिखा।
जयपाल सिंह का टीम छोड़ने का मुख्य कारण टीम प्रबंधन और एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे। उनके राष्ट्रवादी विचार भी हॉकी के बड़ा साहबों को कतई रास नहीं आ रहे थे।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने भाग नहीं लिया, जबकि वो उस वर्ष का यूरोपियन चैंपियन था। उस समय चर्चा ये थी कि उनका गुलाम देश भारत उन्हें हॉकी के मैच में हरा ना दे। बाद में ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा।
पता नहीं इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम भावी ओलंपिक खेलों में हमारा सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा, ताकि हम उन्हें दिखा पाएं कि हम उनकी तुलना में कितने अच्छे या बुरे हैं। मेरे लिए ये दुख की बात रही कि मैं जब तक भारत के लिए खेला, मेरी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई।
एम्स्टर्डम में भारत ने बिना गोल खाए 29 गोल किए। मजेदार बात ये रही कि ये प्रतियोगिता असली ओलंपिक खेल शुरू होने से 2 महीने पहले मई 1928 में खेली गई, जबकि ओपनिंग सेरेमनी और बाकी के ओलंपिक खेल जुलाई में हुए। जयपाल सिंह को इन खेलों में भारत की कप्तानी करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब वो ऑक्सफोर्ड पहुंचे तो उन्हें अपने प्रोफेसरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा,
मुझे बताया गया कि मैंने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है और मुझे वहाँ एक और साल रहना पड़ेगा। अंग्रेजों के लिए ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की कप्तानी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ICS से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार को बता दिया कि मैं मुझे दिए गए 350 पाउंड भी वापस नहीं करूंगा। गनीमत ये थी कि मुझे जेल नहीं भेजा गया।
ICS छोड़ने के बाद उन्हें ब्रिटिश कंपनी बर्मा शेल ने अपने यहाँ ऊंचे पद पर रखने की पेशकश की। उन्हें कोलकाता की पोस्टिंग मिली। यहीं उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी तारा विनफ्रेड मजुमदार से हुई। वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश बनर्जी की पोती थी। थोड़े दिनों बाद जयपाल सिंह कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। वो संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ 3 बार सांसद रहे। उन्होंने ही पहली बार झारखंड राज्य के गठन की मांग उठाई और अंततः सन 2000 में झारखंड भारत का 29वां राज्य बना। आप सुन रहे हैं रियो ओलंपिक्स पर BBC हिंदी और आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति चलो रियो। मैं हूं रेहान फतल और अब जिक्र हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का। किसी भी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस कदर अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई हैं, मानो वो कोई देवता हो। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था,
ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था।
पूर्व ओलंपियन नंदी सिंह ने ध्यानचंद को हॉकी खेलते हुए कई बार देखा था। एक बार BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा था,
अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बाल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बाल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे, वो बिल्कुल ड्रिबलिंग करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक एक इंच का मिना हुआ पास देते थे जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके राइट फुट के सामने बाल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी, वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बाल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बाल जाना है। उनकी स्कोरिंग पार बहुत ही अच्छी।
ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे, उनकी पत्नी जानकी देवी ने एक बार उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था।
कलकत्ता गए खेलने को तो एक पिलियन ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का पिलियन का कंधा थपथपाया। सब आ बेटा कोई बात नहीं है, अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोके तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया।
दो बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त कहते हैं कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे,
लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंद्वी मूव कर रहे हैं।
याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इस बात से होता है कि उसमें आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल करने का दम है या नहीं। ध्यानचंद इस कसौटी पर खरे उतरते थे। केशव दत्त कहते हैं,
जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं तो वो गेंद को पास कर देते थे। इसलिए नहीं कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे के दौरान उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। जब उनसे बाद में उनकी इस अजीब सी हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था।
1936 के ओलंपिक खेल बर्लिन में हुए थे। इनका उद्घाटन किया था जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने। खेल शुरू होने से पहले भारतीय टीम एक अभ्यास मैच में जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद अपनी आत्मकथा गोल में लिखते हैं,
जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए।
दारा सेमीफाइनल तक ही बर्लिन पहुंच पाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए ये मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस पार्टी का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ हिटलर समेत जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। ताज्जुब ये था कि जर्मन खिलाड़ियों ने भी भारत की तरह छोटे छोटे पासों से खेलने की तकनीक अपना रखी थी। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। उसके बाद तो गोलों की छड़ी लग गई। बाद में INS दारा ने लिखा,
गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल न मारा जाए। जर्मन खिलाड़ियों को सिर्फ ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में लेकर जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। एक अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा,
बर्लिन लंबे समय तक भारतीय हॉकी टीम को याद रखेगा। भारतीय टीम ने इस तरह की हॉकी खेली मानो वो स्केटिंग रिंग पर दौड़ रहे हों। उनके स्टिक वर्क ने जर्मन टीम और दर्शकों को अभिभूत कर दिया।
ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले अशोक कुमार ने BBC को बताया,
72 की बात है, हम मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एकाएक मैंने देखा कि एक थ्रेशर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी वो उन्होंने मुझे दिखाई और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर योर फादर वॉज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे, लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरेरी मेजर का पद दिया।
भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदन लाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी किताब में निकेत भूषण लिखते हैं,
उस मैच में हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि मैंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है, मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई भी आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा, क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने आप हमें सुनाएंगे? सहगल ने हामी भर ली। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल का गाना गाने का मूड उखड़ चुका था। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने बिना वजह उनका समय बर्बाद किया, लेकिन अगले ही दिन सहगल अपनी कार से उस जगह पहुंचे जहां ध्यानचंद की टीम ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए और हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की।
आप सुन रहे हैं चलो रियो, रेहान फजल के साथ। और अब रियो ओलंपिक में भारत की संभावनाएं। मुक्केबाजी में भारत का ओलंपिक खेलों में एक समृद्ध इतिहास रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में विजेंदर सिंह और 2012 लंदन खेलों में मैरी कॉम कांस्य पदक जीत चुके हैं, लेकिन इस बार शिव थापा अकेले भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। बैंटम वेट वर्ग में जैसे ही शिव थापा ने कजाकिस्तान के कैरात येरालियेव को हराकर एशिया ओशियाना बॉक्सिंग के ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश किया, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। इस समय विश्व बैंटम वर्ग रैंकिंग में उनका तीसरा स्थान है। उनसे बात की हमारी साथी राखी शर्मा ने।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एशियन ओलंपिक्स क्वालिफायर्स, और काफ़ी टफ पड़ाव था मेरे लिए क्योंकि पिछली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं काफ़ी क्लोज था बट मैं कर नहीं पाया। तो इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, लोगों का प्यार था मेरे साथ और मेहनत थी मेरी जो मुझे क्वालिफाई करने का मुझे मौका मिला इस बार। और जहाँ तक की बात है सेमीफाइनल की फाइट में मैंने कजाकिस्तान को हरा के ओलंपिक्स के लिए अपना स्थान बनाया। रियो के लिए अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है।
शिव, रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तो आपने कर लिया, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो मलाल रहेगा, गोल्ड मेडल से चूक गए?
हाँ जरूर जरूर जी, क्योंकि देखिए हर कंपटीशन से मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ और इस कंपटीशन में मैं मेरा जो मेन टारगेट था वो था ओलंपिक्स क्वालिफाई करने का और वो मैंने पूरा किया। और जहाँ तक की बात है फाइनल्स की गोल्ड जीतने की, वो हमेशा मेरा टारगेट रहता है हर कॉम्पिटिशन में कि मैं जीतूँ ताकि जो नेशनल एंथम है हमारा भारत का वो वहाँ पे पोडियम पे लोगों को सुनने मिले और प्राउड फील करूँ। तो मैंने बहुत जोर लगाया, फाइनल फाइट में थाईलैंड के साथ था बट ही वॉज सेकेंड नंबर इन एशिया और आने वाले कॉम्पिटिशन में मुझे फिर से इन बॉक्सरों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर आने वाले कॉम्पिटिशनों के लिए और प्रिपेयर करूंगा ताकि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत सकूं।
शिव, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी जो वेट कैटेगरी है 56 केजी, इसमें फिलहाल वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन कैसा है? क्योंकि अभी एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में तो आपकी कैटेगरी में हम कंपटीशन देख ही चुके हैं।
मैंने लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, तो वर्ल्ड लेवल की क्वालिफाइंग में वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड में ये बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिटिव मैच रहा है मेरे लिए। और जहाँ तक एशियन की भी बात है, मैं पिछली बार 2013 में एशियन चैंपियन रह चुका हूँ एक बार, और लास्ट लंदन के एशियन क्वालिफाइंग में भी मैं गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। तो उसके बाद ये एशिया का जो मेरा सफर है और वर्ल्ड का सफर है, ये काफी मुझे एक्सपीरियंस दे गया है और मैंने अपने एशिया में अपना अच्छा जगह बनाया हुआ है फैंटम वेट में।
शिव, एक तरफ बड़ी न्यूज ये है कि आपने 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ फेडरेशन को देखें तो उनका विवाद अभी भी चल रहा है AIBA के साथ। अभी भी इंडियन बॉक्सर्स AIBA के फ्लैग के अंडर खेल रहे हैं, तो इस महीने की जो डेडलाइन है उसके अंदर भी अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगा इंडियन बॉक्सर्स का रियो में पार्टिसिपेट करना इंडियन फ्लैग के अंदर?
देखिए, हमारा जो मेन फोकस रहता है हमारे कॉम्पिटिशन पे रहता है और परफॉर्मेंस पे रहता है, पर जहाँ तक की बात फेडरेशन की आती है तो डेफिनेटली हम पहले से चाहते थे कि ये जितने जल्दी ये चीज सॉल्व हो उतना ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि फेडरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट हमें इतना कोई फर्क, मतलब इतना ज्यादा बॉक्सरों पे इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है अब तक, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फेडरेशन का जो मामला है जितना जल्दी सॉल्व हो उतना अच्छा है, जितना जल्दी रीइलेक्शन हो उतना अच्छा है, सो दैट हम इंडिया फ्लैग के अंदर खेल सके।
शिव, वैसे तो आप अभी काफी छोटे हैं, सिर्फ 22 साल के हैं, लेकिन क्या आपने भी सोचा है कभी विजेंदर की तरह प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने का?
जब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में मैंने जाना तो मुझे भी ये लाइफ में मुझे रहता है कि मैं कभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी ज्वाइन करूं आफ्टर ओलंपिक्स मेडल के बाद। तो अभी फिलहाल मुझे अभी प्रोफेशनल के लिए मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, बट जहां तक मेरा सपना है अभी ओलंपिक्स का मेडल जीतना है भारत के लिए, मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूं।
ये थे मुक्केबाज शिव थापा, रियो में कुछ कर गुजरने के लिए बेताब। देखना है रियो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज बुलसाई पर निशाना लगाते हैं या भारतीय तीरंदाज लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपने आखिरी ओलंपिक में कुछ गुल खिला पाते हैं या नहीं। कुश्ती में योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव के पास विश्व स्तर पर परफॉर्म करने का मादा है या नहीं, या फिर इन सबसे अलग कोई भारतीय डार्क हॉर्स बैठा है 2016 के ओलंपिक खेलों को अपने नाम करने के लिए। फिलहाल रेहान फजल को दीजिए इजाजत, चलो रियो में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।